12 सितंबर दिन भर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से कहा तमिलनाडु को रोज 12,000 क्यूसेक पानी दें। कर्नाटक में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन
कि अगर वो इशू को अगर इसको ज्यादा उछाल उछाल कर रिपीटेड 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 दिखा दिखा के लोगों में जो जज्बात को भड़काने की पहल की गई है, मैं इसकी मुजम्मत करता हूँ।
न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा, बिन्नी और शार्दुल ठाकुर हटाए गए, गंभीर को मौका नहीं।
जो बीसीसीआई के बैनर के नीचे खेलते हैं उनकी चर्चा होती है, सिलेक्टर्स का काम ही है जो अच्छा करते हैं उसको मौका देना। द प्रॉब्लम इन क्रिकेट इज ओनली 11 कैन प्ले।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। कावेरी जल विवाद पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को आदेश दिया है कि वो तमिलनाडु को 20 सितंबर तक प्रतिदिन 12,000 क्यूसेक पानी दे। तमिलनाडु को पानी देने के फैसले से नाराज प्रदर्शनकारियों ने बेंगलुरु में कई दुकानों में तोड़फोड़ की, पत्थर फेंके, कई गाड़ियों में आग लगा दी। करीब 40 बसों को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया। हालात को देखते हुए शाम 5 बजे के बाद पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई। अर्धसैनिक बलों के साथ 20,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा को पद से हटा दिया गया है। पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने निर्देश दिए हैं कि जेपी राजखोवा राज्यपाल पद से हट जाएं। साथ ही राष्ट्रपति ने मेघालय के राज्यपाल वी षणमुगनाथन को अरुणाचल प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। राष्ट्रपति ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में स्थायी इंतजाम होने तक षणमुगनाथन अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को निमोनिया हुआ है और उनका इलाज चल रहा है। हिलेरी क्लिंटन शनिवार को न्यूयॉर्क में 9/11 की बरसी के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीमार हो गई थीं। बीमारी के चलते हिलेरी ने कैलिफोर्निया में अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया। उधर राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन के प्रतिद्वंदी और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो हिलेरी के जल्द ठीक होने की आशा करते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमरीकी चुनाव अभियान में सेहत एक मुद्दा रही है और वो जल्दी ही अपनी सेहत की जानकारी जारी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,
सेहत की
जांच कराऊंगा और जैसे ही जानकारी आएगी उसे जल्दी ही जारी करूंगा। उम्मीद है कि वो अच्छी होगी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी होगी। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जब आंकड़े आएंगे तब मैं पूरा ब्यौरा दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीका और रूस के साझा युद्धविराम शुरू होने से चंद घंटे पहले सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि वो विद्रोहियों से पूरा सीरिया वापस लेंगे। असद का बयान कई विद्रोही गुटों के समझौते पर गारंटी की मांग के बाद आया है। सीरिया के मुख्य विपक्ष ने कहा है कि अमरीका को स्पष्ट करना होगा कि कौन से गुट आतंकवादी गुट में आते हैं। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने कहा है कि उनके देश का उद्देश्य सीरिया में मानवीय सहायता के ट्रक तभी भेजने का है जब युद्ध विराम योजना के अनुसार हो। चीन की सरकार ने कहा है कि मौत की सजा पर सख्त नियंत्रण रखा जाएगा। ये सजा कम संख्या वाले बेहद गंभीर अपराधों के अपराधियों को दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में चीन में हर साल सबसे ज्यादा मौत की सजा दी जाती है, लेकिन सही संख्या कितनी है ये अब तक एक रहस्य है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। शुरुआत करते हैं कर्नाटक से। कावेरी जल बंटवारे पर आज उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए कर्नाटक से कहा है कि वो तमिलनाडु को 20 सितंबर तक प्रतिदिन 12,000 क्यूसेक पानी दे। इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने 5 सितंबर को दिए अपने आदेश में कर्नाटक से अगले 10 दिनों तक प्रतिदिन तमिलनाडु को 15,000 क्यूसेक पानी देने की बात कही थी। इसके बाद बेंगलोर में हड़ताल शुरू हो गई और तमिलनाडु के नंबर वाले कई ट्रकों को निशाना बनाया गया। बेंगलोर से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं वो एक लॉरी पर पत्थर फेंककर गांच टूटने की है। असल में ये दूसरा वाकया है जो बेंगलुरु में हुआ। इससे पहले एक लॉरी को आग लगा दी गई थी क्योंकि वो तमिलनाडु में रजिस्टर हुई थी। इस हिंसा का वजह यह नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय बदल दिया है। कर्नाटका ने आज सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी कि उसको हर दिन 15,000 क्यूजिक पानी कावेरी से नहीं दे पाएगी क्योंकि उसके पास उतना पानी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि कर्नाटका 12,000 क्यूजिक पानी तमिलनाडु को छोड़े सितंबर के 20 तारीख तक। बीजेपी के पूर्व कानून मंत्री सुरेश कुमार ने कहा,
बिकॉज सुप्रीम कोर्ट शुड हैव लुक्ड इनटू द एक्चुअल सिचुएशन प्रिवेलिंग इन बोथ कर्नाटका एंड तमिलनाडु।
आज के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कर्नाटका तमिलनाडु को पिछले हफ्ते से बढ़कर पानी छोड़ना होगा। मतलब ये है कि कर्नाटका के पहले निर्णय से सिर्फ 10 दिन के लिए 15,000 क्यूजिक पानी छोड़ना था, यानी कि सितंबर के 7 तारीख से 16 तारीख तक। लेकिन आज के निर्णय से कर्नाटका को सितंबर के 20 तारीख तक 12,000 क्यूजिक पानी छोड़ना होगा। ये थे सुरेश कुमार के शब्द। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर तो राज्य सरकार कुछ नहीं कहा, ना तो कर्नाटका के वकीलों की टीम। कर्नाटका के वकील कोर्ट की लिखित ऑर्डर के इंतजारी में शाम तक बैठे हुए थे, पर बेंगलुरु और कर्नाटका के दूसरे जिलों में हिंसा का वजह कुछ और था। वो यह था कि शनिवार को थोड़े युवक ने एक तमिल बात करने वाले लड़के को थप्पड़ मारते हुए एक वीडियो निकाला जो वायरल हो गया। उसके वजह से आज सुबह 4 बजे चेन्नई की एक मशहूर होटल पर हमला हुआ। उसके बाद बेंगलुरु के मैसूर रोड पर एक लॉरी को आग लगा दी गई और उसके बाद सारे राज्य में कुछ 15 लॉरी पर पत्थर फेंके गए। पर कर्नाटका के मंत्री रोशन बेग का माना कुछ और है।
ये बड़े अफसोस की बात है कि कहीं कुछ छोटा सा मामला हुआ, थोड़ा सा मसला हुआ, तो उसको इतना उछालना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो खासकर जो रीजनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मैं उनको जिम्मेदार ठहराऊंगा कि अगर वो इशू को had it not been blown out of proportion, अगर इसको ज्यादा उछाल उछाल के रिपीटेड 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 दिखा दिखा के लोगों में जो जज्बात को भड़काने की पहल की गई है, मैं इसकी मुजम्मत करता हूँ।
बेंगलुरु में करीब 20,000 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं और जहाँ भी तमिल बात करने वाले लोग रहते हैं वहाँ केंद्र की पुलिस यूनिट्स को ड्यूटी पर लगाया गया है। दरअसल इस हिंसा का कारण वही है जो हर कोई हमारे देश में डरता है और नहीं चाहता है, पहचान की राजनीति और हिंसा। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका और रूस के बीच शुक्रवार को हुए समझौते के तहत आज शाम से सीरिया में युद्ध विराम लागू हो रहा है, लेकिन सीरिया के राष्ट्रपति बशार अल असद ने इस पर एतराज जताया है और ये दोहराया है कि वो पूरे सीरिया पर दोबारा से कब्जा कर लेंगे। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुना रहे हैं रोहित जोशी।
सीरियाई आसमान के पश्चिम में सूरज के ढलते ही हवाई हमलों से हो रही धमाकों की ये आवाजें थम जाएंगी। अमेरिका और रूस के बीच महीनों तक चली वार्ता के बाद शुक्रवार को जेनेवा में दोनों देश सीरिया में युद्ध खत्म करने और राजनीतिक हस्तांतरण की शुरुआत करने की एक योजना पर सहमत हो गए थे। सीरिया के सरकारी मीडिया का कहना है कि राष्ट्रपति बशार अल असद ने इस समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने युद्ध विराम की शुरुआत होने से कुछ ही घंटे पहले अपने एक बयान में कहा है कि सीरिया की सरकार अब भी हर एक इलाके को चरमपंथियों से छुड़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसप तैयब अर्दोगान ने कहा है कि अगर प्रस्तावित योजना के तहत युद्ध विराम की शुरुआत होती है तो उनका देश सीरिया में प्रभावितों की मदद के लिए जरूरत के सामान से लदे ट्रक भेजेगा।
आज सूरज ढलने के बाद, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र के जरिए हो या हमारे रेड क्रिसेंट के जरिए, हम प्रभावित लोगों को खाना पीना और कपड़े पहुंचाएंगे, खासकर अलेपो शहर में। हमारे रेड क्रिसेंट तुर्की की आपदा प्रबंधन एजेंसी AFAD के साथ काम करते हुए अलराई और जाराबल्स तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहे हैं।
ये थे तुर्की के राष्ट्रपति रेसप तैयब अर्दोगान के शब्द। हालांकि अब भी यह साफ नहीं है कि क्या सभी विद्रोही गुट इस समझौते का स्वागत करेंगे। फ्री सीरियन आर्मी ने अमरीकी प्रशासन को लिखा है कि वह सकारात्मक रूप से युद्ध विराम में सहयोग करेगा, लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरे प्रमुख विद्रोही गुट इस्लामिस्ट अहरार अल शाम ने इस समझौते को खारिज किया है। अपने एक वीडियो बयान में संगठन के दूसरे नंबर के प्रमुख नेता अली अल ओमर ने कहा है कि जिन विद्रोहियों ने 6 साल लड़ाई लड़ी है और मुसीबतें झेली हैं, वे आधे समाधान को नहीं स्वीकार सकते। इस युद्ध विराम से पहले सीरिया की सरकारी सेना ने विद्रोहियों के कई इलाकों पर हवाई हमले किए हैं, जिनमें लगभग 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं इडलिब और एलेपो प्रांतों में रूसी जंगी जहाजों को भी सक्रिय देखा गया है।
असद ने कहा वो पूरे सीरिया पर दोबारा कब्जा करेंगे। अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें नमूनिया हो गया है और उनका इलाज चल रहा है। हिलेरी क्लिंटन शनिवार को न्यूयॉर्क में 9/11 की बरसी के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीमार हो गई थी। शनिवार को ट्विटर पर पोस्ट किए गए वीडियो में दिखाई दिया कि क्लिंटन के सहयोगी उन्हें सहारा देकर कार्यक्रम स्थल से बाहर ले जा रहे थे। उन्हें पूरे आराम की सलाह दी गई है। उन्होंने कैलिफोर्निया में अपने चुनाव प्रचार के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। आइए सीधे चलते हैं वॉशिंगटन बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश, हिलेरी क्लिंटन की बीमारी के बारे में क्या ब्यौरा है आपके पास?
देखें, जो आपने बताया, रविवार को जब 9/11 मेमोरियल पर वहाँ सभा हो रही थी और ये सारा कुछ वीडियो पर नजर आया कि वो अचानक से वहाँ से उठकर चल दी, लड़खड़ाती हुई चली और सीक्रेट सर्विस के 2 अधिकारियों ने उन्हें सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। उनका जूता पीछे रह गया, किसी तरह एक तरह से घिसट कर वो बैठी है उसमें। और फिर वहीं पास में उनकी बेटी रहती है चेल्सी क्लिंटन, उनके घर उन्हें ले जाया गया। 2 घंटे के बाद वो वहां से निकली, हाथ हिलाते हुए। ये पूरी कोशिश ये दिखाने की थी कि बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, लेकिन शाम में फिर उनकी टीम ने ये बयान जारी किया कि वो एंटीबायोटिक्स पर है और उन्हें शुक्रवार को निमोनिया हो गया था। तो एक तरह से कि जाहिर है कि उनके स्वास्थ्य से जुड़े जिन सवालों को उनका कैंपेन एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का नाम देकर दरकिनार कर रहा था, वो अब चुनावी मुख्य धारा का हिस्सा बन गया है। आज 2 दिनों तक उन्होंने अपने जो भी कार्यक्रम थे सोमवार और मंगलवार कैलिफोर्निया जाने का, वो रद्द कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप, जो उनके विरोधी, जो उनके सेहत पर अक्सर सवाल उठाते रहे थे पिछले दिनों में, आज जाहिर है वो उन्होंने काफी संयम दिखाया है क्योंकि उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ रही।
अच्छा, ब्रजेश ये बताएं,
हंगामा मचा हुआ है तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सेहत अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है इस चुनाव का।
ये बताएं, ये उम्मीदवार का स्वास्थ्य आपको लगता है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ये मुद्दा बन गया है, लेकिन वास्तव में क्या इस मुद्दे पर भी चुनाव लड़ा जा सकता है?
सिर्फ एक ये मुद्दा नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति, एक चीज गौर करने वाली बात ये है रेहान, दोनों की उम्र देखिए। हिलरी क्लिंटन जब व्हाइट हाउस में जाएंगी करीब 68-69 साल की होंगी, डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं तो 70 साल के होंगे। इसीलिए, और ये इतना चुनौती भरा ये पद होता है, काफी डिमांडिंग पोस्ट होता है, ये पद होता है, तो इसलिए हमेशा अमरीकी चुनावों में इस पर सवाल उठे हैं। जॉन मैकेन को आपको याद होगा, लगभग 1000 पन्नों का अपना हेल्थ रिकॉर्ड देना पड़ा था और ये दोनों ही उम्मीदवार अपने हेल्थ रिपोर्ट देने से कतराते रहे हैं अब तक। हिलरी क्लिंटन के साथ जो एक दोहरा मसला ये हो गया है कि वो उनका जो विश्व उनके बारे में ये बात है कि वो बातों को छिपाती हैं, बहुत पारदर्शी नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब ये कहा गया कि जब शुक्रवार को ही निमोनिया हुआ था और अब तक का उनके सवाल सेहत पर सवाल उठ रहे थे, तो उन्होंने फिर से उन बातों को छिपाने की कोशिश की। तो एक तरह से वो जो उनकी विश्वसनीयता है उस पर तो झटका लगता ही है, साथ ही वो कितने फिट हैं कमांडर इन चीफ बनने के लिए उस पर सवाल खड़े करता है। और ऐसे वक्त पर आया है ये, जबकि अब डिबेट बस 2 हफ्ते दूर है, दोनों राष्ट्रपति डिबेट का पहला डिबेट जो है, और जो चुनाव सर्वेक्षण आए हैं राष्ट्रीय, उसमें ट्रंप लगभग बराबर पर आ गए हैं उनसे कई राज्यों में, बल्कि जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं ओहायो और फ्लोरिडा उसमें 1-2 अंकों से आगे नजर आ रहे हैं। तो ये थोड़ी से मुश्किल खड़े कर, बल्कि कई मुश्किलें खड़ी कर रहा है हिलरी क्लिंटन के चुनाव अभियान के लिए। और इसलिए ट्रंप ने मौका का फायदा उठाते हुए उन्होंने कहा है कि वो अपना जो एक हेल्थ जांच उनकी हुई है उसका रिपोर्ट इसी हफ्ते, अंदाजा है कि बृहस्पतिवार तक वो जारी करेंगे। तो जाहिर है ये एक मुद्दा बनने जा रहा है मुख्य धारा का चुनावी बहस का।
बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश उपाध्याय आपका वॉशिंगटन से।
दिन भर
शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। भारतीय कश्मीर में जहां पुंछ जिले में रविवार को प्रतिबंधवादियों से मुठभेड़ शुरू हुई थी, आज फिर से फायरिंग शुरू हो गई। उधर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो हिंसा को भड़का रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले श्रीनगर फोन कर रियाज मसरूर से पूछा कि आज कश्मीर में क्या घटनाक्रम रहा।
जी देखिए, मालूम होगा, हमने रिपोर्ट भी किया है कि शनिवार को ही ये एनकाउंटर शुरू हो गया था, लेकिन कल शाम को सेना और पुलिस का कहना था कि ये एनकाउंटर समाप्त हो गया था, क्योंकि ये एनकाउंटर जो है वो पुंछ जिले में एक अंडर कंस्ट्रक्शन जो मिनी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है वहां पे चल रहा था, लेकिन आज सुबह वहां से एनकाउंटर की साइड से दोबारा फायरिंग हुई और उसमें भी एक और चरमपंथी मारा गया, ऐसा पुलिस का कहना है। और कुल मिलाकर इस एनकाउंटर साइट पर 4 चरमपंथी और 1 पुलिस कर्मी जो है उनकी मौत हो गई है।
कश्मीर में कुछ और प्रदर्शनों की भी खबरें आ रही हैं, उसके क्या डिटेल्स हैं आपके पास?
जी, दक्षिणी कश्मीर में सुबह प्रदर्शनकारियों ने एक रैली का आयोजन करने की कोशिश की। ये पुलवामा जिले में करीमाबाद इलाका है, वहाँ पे सैकड़ों लोग बाहर निकल आए और उनको रोकने के लिए सीआरपीएफ, पुलिस और सेना के भी कर्मी वहाँ पे मौजूद थे और उनके दरमियान फिर क्लैश हो गया और क्लैश में 100 से ज्यादा वहाँ के नागरिक जो है वो घायल हो गए हैं। और जैसा की मालूम है की राजनाथ सिंह जी जो गृह मंत्री है, उन्होंने कल एक रिव्यू लिया था कश्मीर की स्थिति का और उसमें सभी सिक्योरिटी एजेंसीज और खासतौर से नेशनल सिक्योरिटी भी थे। उन्होंने सीधे सीधे ये निर्देश दिया था सिक्योरिटी एजेंसियों को कि जो भी लोगों को उकसाते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको हंट डाउन किया जाए। तो इसके बाद यहाँ पर देखा जा रहा है कि सुरक्षा कर्मी जो है कोऑर्डिनेशन के साथ पुलिस और सेना के साथ मिलकर जो है सभी गांव में जहां भी संवेदनशील इलाके हैं, वहां जहां भी प्रदर्शनों की संभावना होती है वहां पे क्रैक डाउन किया जाता है। और पुलवामा जिले में तो आज एक छोटा मोटा फ्लैग मार्च भी सेना ने किया। तो इस तरह से एक मतलब बड़ी टेंस सिचुएशन है, क्योंकि ईद है कल और ईद से पहले ही अलगाववादियों ने कहा था कि ईद के दिन एक भारत विरोधी मार्च होगा और उस मार्च को रोकने के लिए सभी स्तर पर प्रशासन, सेना और पुलिस जो है उस मार्च को नाकाम करने का प्रयास कर रहे हैं।
ये थे श्रीनगर से रियाज मसरूर। आज सोमवार है और आज के दिन आप इंतजार करते हैं अपने पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं इंदु पांडे और राजेश जोशी।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और मेरे साथ हैं इंदु पांडे, उनका भी नमस्कार। जी आपका भी नमस्कार और सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम में। मैं देख रहा हूँ हमेशा की तरह आपके पास पोस्ट कार्ड भी हैं और ईमेल कहीं नहीं दिख रहे। हाँ, ईमेल भी,
ईमेल भी है।
आपने छुपा के क्यों रखे हैं ईमेल?
मैंने सोचा कि पहले जो हाथ से लिखी हुई चिट्ठी है उनको ले लिया जाए।
अच्छा ठीक है।
ये चिट्ठी हमारे पास आई है फारूक अब्दुल्ला फिजा लक्ष्मीपुर रक्सौल पूर्वी चंपारण बिहार से। कहते हैं कि दिनांक 2 सितंबर को प्रोग्राम नमस्कार भारत प्रातःकालीन सभा में बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय जी का डायरी सुनी, बहुत अच्छी लगी। चूंकि प्रोग्राम में ये बताया गया कि बहुत अच्छे लगते हैं जब ब्रजेश जी अपनी डायरी बीबीसी पर प्रस्तुत करते हैं।
ये ब्रजेश ने अपनी डायरी की शुरुआत ही इन शब्दों से की थी, बहुत अच्छे लगते हैं जब, और एक के बाद एक वो सिलसिला शुरू हुआ। तो ब्रजेश की डायरी तो बहुत ही खुशनुमा होती है और कभी गुदगुदाने वाली होती है, सोचने पर मजबूर करने वाली होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना और ब्रजेश जी तक आपकी बात पहुँच ही गई है।
और हमारे पास ये चिट्ठी आई है अभिषेक गौरव गाँव घघरी जिला मुजफ्फरपुर बिहार से कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है, हाँ थोड़ा मुश्किल जरूर होता है।
बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, मुश्किल तो चीजें होती हैं, नामुमकिन लेकिन नहीं होती, आप मुश्किल को आसान कर सकते हैं।
जी आगे लिखते हैं कि बीबीसी से बस एक गुजारिश है कि आजकल बहुत चर्चा में है बलूचिस्तान, पीओके और गिलगित बल्टिस्तान, तो वहाँ पर एक विस्तृत रिपोर्ट रेहान फजल अपने शब्दों में सजा कर देते तो श्रोताओं को बहुत अच्छा लगता।
यानी ये कहना चाह रहे हैं जो पाक अधिकृत कश्मीर है या पाक प्रशासित कश्मीर है, बलूचिस्तान है, गिलगित बल्टिस्तान है, उस पर रेहान फजल को विवेचना करनी चाहिए, शायद ये इनका मंतव्य है।
जी।
तो रेहान साहब तक ये बात आपकी पहुंचा दी जाएगी और विवेचना में अगर इस तरह का कोई विषय हुआ तो जरूर उसका ख्याल रखा जाएगा और ये कार्यक्रम होगा, लेकिन ये मैं सब कुछ रेहान फजल पे छोड़ता हूँ।
बीबीसी की पूरी टीम को रवि रंजन का सादर नमन।
ये रवि रंजन कहाँ से?
ये दिल्ली मुखर्जी नगर से लिखते हैं।
अच्छा, लगता है हमारे पुराने श्रोता है, इनकी चिट्ठियाँ मुझे याद है, पहले भी लिख चुके हैं ईमेल। और इनकी आलोचना बड़ी धारदार होती है।
आगे लिखते हैं कि ये दुर्लभ अवसर होता है जब संयोग से कोई जादूगरी आवाज आवाज के जादूगर का तारुफ कराए और 40वीं बरसी पर संदर्भ में विवेचना लाजवाब और ज्ञानवर्धक रही। और आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि क्या बीबीसी के पास इतना वक्त है कि वो इस पर एक प्रस्तुति कर लोगों को शिक्षा के वास्तविक स्थिति से अवगत करा सके कि वास्तव में आज शिक्षा किसको, क्या और किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दी जा रही है।
भाई रवि रंजन भाई, मुझसे गलती हो गई, मैंने सोचा था कि आप आलोचना में और कुछ धारदार आलोचना में कुछ कहेंगे, लेकिन आपने तो तारीफ की है कार्यक्रमों की और सुझाव दिए हैं, तो हमें बहुत खुशी है कि आपने ये सुझाव दिया। अगर संभव हुआ तो इसको हम कोशिश करेंगे। मैं यही कहता हूँ बार बार कि कोशिशें कामयाब होती हैं, और जैसे कि अमिताभ बच्चन की एक फिल्म था कि वादे टूट जाते हैं और कोशिशें कामयाब हो जाती हैं, तो कोशिश हमारी जारी है।
और ये हैं बबलेश पंवार, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। कहते हैं कि मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ लेकिन आपके कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता हूँ।
अरे आपका कार्यक्रम है बबलेश जी, ये कार्यक्रम कोई न तो इंदु पांडे का है न राजेश जोशी का है, हमारा तो है ही है लेकिन श्रोताओं का कार्यक्रम पहले है।
लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी सी बात कही है कि कहते हैं कि आपके कार्यक्रम की गुणवत्ता इतनी सटीक होती है कि तारीफ के अलावा कुछ लिख ही नहीं सकते, और तारीफ भी हम इस पर लिख नहीं पाते कि प्रस्तुति के बराबरी हम नहीं कर पाते। इसलिए
क्या बात है बबलेश जी, आपके ये जो शब्द हैं इनसे हमें बहुत ही एक तरह से ताकत मिली है और बहुत प्रेरणा मिली है। लिखते रहिए और कभी हिचकिए नहीं, क्योंकि ये आपका कार्यक्रम है, आप जब हमें सुनते हैं तभी हम हैं, इसलिए लगातार लिखते रहें। और मैं देख रहा हूँ कुछ चिट्ठियां आपके पास। अब विष्णु शर्मा, ग्राम ककोली, में दूर से ही पढ़ रहा हूँ, ककोली जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश भारत। अच्छा, और मोबाइल नंबर भी दिया है। क्या लिखते हैं, पहले इनकी चिट्ठी पढ़ लें।
कार्यक्रम में एक बात बहुत खलती है कि पूरा दिन भर कार्यक्रम सिर्फ 30 मिनट का होता है जिसमें विश्व समाचार के उपरांत प्रमुख घटनाओं के विश्लेषण के लिए समय कम रहता है।
हाँ, कम रहता है, ये बात ये सही कह रहे हैं, आधे घंटे का कार्यक्रम होता है, लेकिन जो हम 3-4 दिन तय किए हैं, जैसे दुनिया जहान है, चिट्ठियों का कार्यक्रम तो है ही, और विवेचना होती है। बात सही है आपकी कि आधे घंटे के कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें नहीं डाली जा सकती, लेकिन एक जैसी चीज़ें भी नहीं हो सकती हैं कार्यक्रम में। इसलिए अगर आप 9:30 बजे वाला हमारा कार्यक्रम सुने तो ये मैगजीन के कार्यक्रम उसमें नहीं होते हैं, सुबह के कार्यक्रम सुने तो आपको एक बैलेंस मिल जाएगा।
जी, और ये भी चिट्ठी हमारे पास आई है बीबीसी की निष्पक्षता को सलाम करते हुए, ये लिखते हैं।
इनका नाम है जोगाराम मेघवाल, ग्राम पोस्ट चूली डूंगरी, चौहरन बाड़मेर राजस्थान से। जी हाँ, बाड़मेर के हमारे श्रोता।
कहते हैं कि रेहान फजल से बड़ी भावुक करने वाली विवेचना सुनने के बाद।
ये कौन सी विवेचना की बात कर रहे हैं?
मदर टेरेसा
पे जी।
और कहते हैं कि इस तरह की जो विवेचना है वो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की धारणा पर करें तो अच्छा लगेगा।
बहुत ही अच्छा सुझाव है आपका, और मैं रेहान से अभी जब स्टूडियो से बाहर जाएंगे तो रेहान साहब से इस पर बात करेंगे। जोगाराम मेघवाल जी, आपने जो ये सुझाव दिया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पे एक विवेचना करने का, तो हम इस पर जरूर कोशिश करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन आप सुन पाएंगे इसे शायद।
तो इसी के साथ अपने श्रोताओं से ले लें इजाजत।
अब जिन श्रोताओं की चिट्ठियां शामिल नहीं हुई हैं उनसे हम क्षमा भी चाहते हैं, और चलते चलते पता बताते हैं। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और ईमेल से अगर हमें आप अपनी राय भेजना चाहें तो लिखिए hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
बीसीसीआई की चयन समिति ने आज जब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की टेस्ट टीम का ऐलान किया तो उसमें ना तो गौतम गंभीर का नाम शामिल था और ना ही ऑस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाफ खेलने वाले भारत के किसी और खिलाड़ी का। आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट।
बीसीसीआई की चयन समिति ने आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाली 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया। टीम में बहुत अधिक बदलाव तो नहीं हुए, और हुआ बस इतना कि पिछले दिनों वेस्टइंडीज दौरे पर जो 17 खिलाड़ी गए थे उनमें से 2 स्टुअर्ट बिन्नी और शार्दुल ठाकुर को टीम में जगह नहीं मिली। टीम की कमान विराट कोहली को सौंपी गई है और अजिंक्य रहाणे टीम के उपकप्तान हैं। केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, मुरली विजय, शिखर धवन, रोहित शर्मा और रिद्धिमान साहा टीम के बल्लेबाजों में शामिल हैं। माना जा रहा था कि रोहित शर्मा को शायद टीम में जगह न मिले क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उन्हें जिस तरह लगातार अवसर मिले उस तरह का उनका प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन कप्तान विराट कोहली और चयनकर्ताओं का भरोसा उनमें बना रहा। चेतेश्वर पुजारा की जगह वेस्टइंडीज में भी रोहित शर्मा को मौका दिया गया था। चेतेश्वर पुजारा ने दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में दोहरा शतक जमाया और कल वो 256 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत के पूर्व कोच और ऑलराउंडर रहे मदनलाल मानते हैं कि चेतेश्वर पुजारा को केएल राहुल से सीख लेनी चाहिए।
उनके सामने एक एग्जांपल है केएल राहुल, जिन्होंने अपनी गेम को कितना अल्टर किया है, टेस्ट क्रिकेट से लेकर वनडे क्रिकेट और 2020 क्रिकेट में उन्होंने काफी इम्प्रूवमेंट किया, तो पुजारा को भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा ताकि ये अपना एक जो स्थान है वो बनाए रखें।
तो क्या टेस्ट क्रिकेट में अब एक छोर पर खूंटा गाड़कर खेलने वाले खिलाड़ियों की जरूरत नहीं रही और क्या चेतेश्वर पुजारा को अपना स्टाइल बदल लेना चाहिए? दिलीप ट्रॉफी मुकाबलों में कमेंट्री कर रहे भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज विजय दहिया कहते हैं,
टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर आप अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो 11 रन बनाने पड़ेंगे। डेढ़ दिन आपने बैटिंग कर ली, 500 के आसपास पहुंच गए और फिर आप दूसरी टीम को दो बार आउट करने की सोचें। शायद पुजारा थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं। पुजारा ने टेस्ट मैच के अंदर जो अपनी जगह खोई है उसका बहुत बड़ा कारण एक ये भी है।
वहीं दिलीप ट्रॉफी में पिछली पारियों में 77, 59 और 94 रन की पारी खेलने वाले गौतम गंभीर के नाम पर शायद चर्चा हुई हो, लेकिन चयन समिति के अध्यक्ष संदीप पाटिल ने वही जाना पहचाना जुमला दोहराया।
जितने सारे प्लेयर्स हमारे हैं जो बीसीसीआई के बैनर के नीचे खेलते हैं उनकी चर्चा होती है। सिलेक्टर्स का काम ही है कि जो अच्छा करते हैं उसको मौका देना। द प्रॉब्लम इन क्रिकेट इज ओनली 11 कैन प्ले।
गेंदबाजी में आर अश्विन, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव और अमित मिश्रा जैसे जाने पहचाने चेहरे शामिल हैं। देखना बस इतना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जब भारतीय टीम 22 तारीख को कानपुर में पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरेगी तो पिच में बदलाव होगा या नहीं, क्या पहले ओवर से ही टर्न लेते विकेट होंगे या ऐसे जिन पर बल्लेबाज भी सांस ले सकें और मैच का नतीजा तीसरे दिन ही नहीं पांचवें दिन निकले।
विंबलडन के तीसरे दौर में हार कर बाहर होने वाले सर्बिया के नोवाक जोकोविच जब अमरीकी ओपन के फाइनल में पहुंचे तो लगा जैसे वो अपना खिताब बचा लेंगे, लेकिन स्टेन वावरिंका तो जैसे छुपे रुस्तम साबित हुए। वावरिंका ने जोकोविच को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता। कैसा रहा फाइनल बता रहे हैं एक बार फिर आदेश गुप्त।
कल सर्बिया के नोवाक जोकोविच अपना खिताब बचा नहीं सके और अमरीकी ओपन को एक नया चैंपियन मिला स्टेन वावरिंका। वावरिंका ने नोवाक जोकोविच को 4 सेट तक चले संघर्ष के बाद 6-7, 6-4, 7-5, 6-3 से हराया। जोकोविच ने बेहद शानदार शुरुआत करते हुए पहले सेट में एक समय 5-2 की बढ़त बनाई, लेकिन उसके बाद वावरिंका ने 2 सेट पॉइंट बचाए और 9वें गेम में जोकोविच की सर्विस भी तोड़ दी, लेकिन टाई ब्रेकर में वावरिंका की खराब सर्विस उन्हें ले डूबी और जोकोविच ने पहला सेट जीत लिया। वावरिंका ने दूसरे सेट में वापसी की और 6-4 से जीत हासिल करते हुए 1-1 की बराबरी हासिल की। तीसरा सेट टाई ब्रेकर में गया जिसमें वावरिंका 7-5 से विजयी रहे। बाद में जोकोविच ने स्वीकार किया कि वो मैच का रुख नहीं बदल सके।
मुझे जितने भी मौके मिले उनमें मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। टाई ब्रेकर में मेरे लिए खेल मुश्किल भरा रहा। इस तरह के मैच में अगर आप अवसर का फायदा नहीं उठाते तो फिर दूसरा व्यक्ति इसका फायदा उठा लेता है।
नोवाक जोकोविच के शब्द। चौथे सेट में तो जोकोविच अपने फिटनेस तक खो बैठे। आखिरकार वावरिंका ने 6-3 से जीत हासिल करते हुए अपने करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया।
Every time I step on the court, I know I can beat my opponent.
मैं जब भी कोर्ट पर अपने कदम रखता हूं, तो मुझे महसूस होता है कि मैं अपने विरोधी को हरा सकता हूं। लेकिन जब मैंने इस टूर्नामेंट में शुरुआत की तब नहीं सोचा था कि मैं ऐसा जश्न मनाऊंगा या टूर्नामेंट जीतना मेरा उद्देश्य था।
स्टेन वावरिंका के शब्द। अब वावरिंका के लिए जश्न का मौका तो बनता ही है। इस बार उन्होंने शुरुआत भले ही टूर्नामेंट जीतने के लिए नहीं की, लेकिन अगली बार तो शुरुआत खिताब बचाने के लिए उन्हें करनी ही होगी।
सभा के अंत से पहले विश्व समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। कावेरी जल विवाद पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को आदेश दिया है कि वो तमिलनाडु को 20 सितंबर तक प्रतिदिन 12,000 क्यूसेक पानी दे। तमिलनाडु को पानी देने के फैसले से नाराज प्रदर्शनकारियों ने बेंगलुरु में कई दुकानों में तोड़फोड़ की, पत्थर फेंके, कई गाड़ियों में आग लगा दी। पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा को पद से हटा दिया गया है। पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने निर्देश दिए हैं कि जेपी राजखोवा राज्यपाल के पद से हट जाएं। साथ ही राष्ट्रपति ने मेघालय के राज्यपाल वी षणमुगनाथन को अरुणाचल प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलकराज भाटिया। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।